قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال رسول الله: يا أبا ذر، اعبد الله كأنك تراه، وإن كنت لا تراه فإنه يراك، واعلم أن أول العبادة المعرفة به، ثم الإقرار بي، ثم حب أهل بيتي. صلوات پڑھنے سرکار ختم مرتبت اپنے عظیم الشان صحابی حضرت ابو ذر کو کچھ خاص نصیحتیں ان کی درخواست پر فرما رہے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جناب ابو ذر نے خود آ کر کے پیغمبر سے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، اور جو باتیں پیغمبر نے ابو ذر سے کہیں طویل گفتگو ہے، عام صحابہ کے درمیان میں حضور اسے بیان نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہر انسان کی ظرفیت، قوت برداشت، قوت تحمل الگ الگ ہے. جس بچے نے ابھی اے بی سی ڈی نہیں پڑھا ہے، اسے آپ کوئی میتھ کی یا جو ہے فزکس کی کوئی عمیق کتاب تو نہیں پڑھائیں گے. اسے قوت برداشت کتنی ہے، ظرفیت کتنی ہے، پیغمبر ظرفیتوں کو دیکھ کر کے گفتگو کیا کرتے تھے. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کو دیکھ کر کے گفتگو کیا کرو. قدر عقل، ہر بات ہر ایک سے ہر جگہ نہیں کہی جاتی. جناب ابو ذر میں وہ ظرفیت پائی جاتی تھی. جناب ابو ذر کی وہ شخصیت معمولی شخصیت نہیں ہے. کمی تذکرہ ہوتا ہے جناب ابو ذر کا، چند باتیں ہیں جو عام طور سے بیان ہوتی ہیں، ورنہ شخصیت ہے جناب ابو ذر. کس طرح سے جناب ابو ذر اسلام لائے؟ جناب ابو ذر کوئی مکے کے رہنے والے بھی نہیں تھے، مکے سے باہر کے دور دراز کے علاقے کے رہنے والے تھے. کان میں خبر پہنچی کہ کوئی نبی آیا ہے، خبر پہنچی. اب یہ خبر سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے واقعی نبی ہو سکتا ہے نبوت کا ڈھونگا چاہ رہا ہو، دونوں امکان ہے. ادھر ابو ذر کو اطلاع ملی کہ مکے میں ایک نبی آیا، ایک شخص آیا ہے جو اپنے کو نبی کہتا ہے. بعض لوگ رد عمل، ارے ایسی خبریں تو آئی کرتی ہیں، جس کو دیکھو کوئی نہ کوئی بات کہتے ہی رہتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کسی بات کو سن کر کے اس کو پہلے ہی مرحلے میں ٹھکرا دیتے ہیں، اس کے بارے میں تحقیق یا جستجو کی زحمت برداشت نہیں کرتے. دیکھیں تو سنیں تو کہہ کیا رہا ہے. اور بعض وہ ہوتے ہیں آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں. وہ آنکھ بند کر کے مان لینا بھی غلط ہے، اور سنتے ہی ٹھکرا دینا، رد کر دینا بھی غلط ہے. एक अकलमंद इंसान जब किसी बात को सुनता है तो उसका गौर करता है, तदब्बुर करता है, तफक्कुर करता है, ताकुल करता है। अगर वो बात मियारे हक पर पूरी उतरती है तो मान लेता है, वरना उसे ठुकरा देता है। ये एक अकलमंद इंसान का तरीकेकार ये होता है। जनाब अबू ज़र अभी इस्लाम नहीं लाए हैं, मुशर्रफ पे इस्लाम नहीं हुए हैं। अबू ज़र को इत्तला मिली कि मक्के में एक शख्स आया है जो अपने को नबी कहता है। फौरन भाई को भेजा, उनके भाई का नाम अनीस है, जुंदब इनका नाम है। अबू ज़र तो ये जो है लकब है ना, नाम इनका है जुंदब। अनीस को भेजा कि जाओ जाकर के पता लगाओ कितनी सदाकत है, कैसा है वो नबी। भाई आया, भाई ने आने के बाद तहकीक किया, तहकीक करने के बाद जाके कहा कि मैं ऐसे शख्स को देख कर आया हूं कि या अमरो बिल मारूफ व यनहा अनिल मुनकर। मैं ऐसे शख्स को देख करके आया हूं जो नबूवत का दावा कर रहा है, अच्छाई की दावत दे रहा है और बुराई से रोक रहा है। अजब माहौल के खिलाफ बातें कर रहा है, क्योंकि मक्के का जो माहौल था, मक्के के जो हालात थे, वो मामला उल्टा था। मारूफ से रोका जाता था और जो है मुनकरात की दावत दी जाती थी, अच्छाइयों से रोकते थे, बुराइयों की दावत दी जाती थी। ऐसे माहौल में अगर किसी शख्स ने ये जुरअत की है, वो मारूफ की दावत दे रहा है, नेकियों की दावत दे रहा है, मुनकर से रोकता है, बुराइयों से रोक रहा है, तो बुजुर्ग ने कहा यकीनन ये शख्स नबी होगा, ये शख्स नबी ही हो सकता है। इतनी जुरात, इतनी हिम्मत है इसमें। सब तो ये जो है हालात की रोटी खाते हैं ना। हवा जिस रुख पर बह रही है, समाज से लड़ने का हर एक में हौसला तो नहीं होता है। उमर वही बात को कहना चाहते हैं जो समाज पसंद करता है। जो बात समाज को नापसंद होती है, वो आमतौर से लोग उससे कतराते हैं, और ऐसे ही लोगों को अकलमंद कहा जाता है। जो समाज से टकरा जाते हैं उनको तो बेवकूफ मारा जाता है, उन्हें तो अहमद समझा जाता है। फारसी की जो है दरबुल मसल भी है कि खाही न शरी रुस्वा हम रंग जमात शो। अगर आप समाज में जलील नहीं होना चाहते हैं तो समाज के रंग में रंग जाओ। जिस तरफ वो जा रहे हैं तुम किसी तरफ चले जाओ। डेढ़ इंच की मस्जिद अलग नहीं बनाना चाहिए, है ना। ये सारे मकूले हमारे यहां जरूर मसल जो पाई जाती है कि समाज से टकराना नहीं चाहिए। ये कौन है इसने समाज से टकराने की हिम्मत कर ली, और टकराने के बाद भी कोई ये जो बुरी बात नहीं कर रहा है, अच्छाइयों की तरफ बुलाता है और बुराइयों से रोकता है। कभी कभी समाज से टकराया जाता है, उल्टा टकराया जाता है। अच्छाइयों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया जाता है, बुराइयां फैलाई जाती है। यहां नहीं, ये क्या कर रहा है, अच्छाइयों की तरफ दावत दे रहा है, बुराइयों से रोक रहा है। तो यकीनन इसका नबी होना करीने कयास है। मगर चल करके खुद तहकीक कर, फौरन मान नहीं लिया, लेकिन दिल में एक बात आई कि इसके नबी होने के चांसेस ज्यादा है, इतना ही तो काफी नहीं है ना पैगंबर होने के लिए। आए जनाब अबू ज़र मक्के आए, तीन शबो रोज मौलाए कायनात के मेहमान रहे, मौला के मेहमान रहे, तीन शबो रोज मौला के मेहमान हैं, और करीब से पैगंबर का जायजा ले रहे हैं, दराए नबूवत को परख रहे हैं, देख रहे हैं। तीन दिन के बाद जनाब अबू ज़र को यकीन हो गया कि नबी ही है, इस्लाम लाए, और इस्लाम लाने के बाद छुपाया नहीं उसे। बहुत सारे लोग छुपा लेते हैं ना, ठीक है हम सुधर है, हालात तो ये है कि यहाँ के ऊपर अगर ऐलान करेंगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज जैसे हालात तो नहीं ना है क्या, कोई आगे कहे मुसलमान है, कोई आके कहे मैं शिया हूँ, कोई आके कहे मैं सुन्नी हूँ, कोई असर नहीं पड़ता। जनाबी अबू ज़र ने जब हकीकत को समझ लिया, समझने के बाद अब अबू ज़र खुल्लम खुल्ला आकर के खाने काबा में अपने इस्लाम का ऐलान कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। जानते हैं कि जो लोग अपने इस्लाम का इजहार करते हैं उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है, या पैगंबर के साथ वो बर्ताव हो रहा है कि जब वो कहते हैं कुलुला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तो उन पर पत्थरों की बारिश कर दी जाती है, तो मानने वालों का क्या हासिल होगा। वो जो मक्के के रहने वाले हैं, जो बनी हाशिम के चश्मो चरान हैं, जिनका अजीम शान कबीला यहां मौजूद है, जब उनके साथ ये बर्ताव हो रहा है तो परदेसी के साथ क्या सलूक होगा? सब कुछ जान रहे हैं, जनाब अबूजर महसूस ये कर रहे हैं, ये मौका छुपाने का नहीं है, ये मौका है मिशन को ताकत पहुंचाने का मौका है, तहरीक को खून की जरूरत है, तहरीक के रगों में खून दौड़ाना है। आए और आने के बाद खाने काबा में जनाब अबूजर ने ऐलान कर दिया, मैं मुसलमान हो गया, मैं इस बात की गवाही देता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा, मैं गवाही देता हूं ये सारे बुत जहां रखे हैं खाने काबा में सब वाकिफ हैं, अगर माबूद है तो सिर्फ एक है जिसका नाम अल्लाह है, वाशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बहुत घायल की मत चुकानी पड़ी, चारों तरफ से उधर पे हमला हो गया, पिटाई होने लगी, नाबे उधर की बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। तो दीन की कीमत चुकाना पड़ती है, दीन की कीमत चुकाना पड़ती है। अगर दीदारों का इतना मकाम अल्लाह ने रखा है तो खामखा तो नहीं रखा है ना। हम बार बार घबरा जाते हैं, हम कुर्बानी देने को तैयार नहीं होते हैं, हम कीमत चुकाने को तैयार नहीं है, पर ज्यादा से ज्यादा हमारा नाम रख लेंगे, हम कह देंगे कि हम मुसलमान हैं, जहां कहीं इस्लाम के किसी कानून पर अमल करने के बिना पर हमें थोड़ी सी मुश्किल अगर पेश आने लगती है, आपस के ताल्लुकात में, बिजनेस में, कारोबार में, जॉब में, कहीं पर भी, तो हम फौरी तौर से उसको कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। इस्लाम सिर्फ उसी वक्त तक मानना चाहते हैं, दीनी तालीमात को उसी वक्त तक गले से लगाना चाहते हैं जब तक दीनी तालीमात हमारे लिए मुश्किल न लगे। लिहाज की बातें हमेशा थे, तुम्हें कुरान मजीद में सदर इस्लाम के मुसलमानों की किस्में बयान की गई है ना, सदर इस्लाम के मुसलमान कैसे कैसे मुसलमान थे, कुछ वो मुसलमान थे जो जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे, लेकिन लम युक्मिनू बिल्लाह तरफत ऐन, एक लहजे के लिए भी वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, जैसे अबू सुफियान, जैसे पूरा ये जो है बनी उमैया, इन्होंने फतह मक्का के बाद इस्लाम का इजहार तो कर दिया था, फतह मक्का के बाद ऐलान ईमान तो कर दिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ने लगे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा ज़बानों पे था, लेकिन लम युमिनू बिल्लाह तरफत ऐन, एक लहजे के लिए भी अल्लाह पर ईमान नहीं लाए थे। ये भी था इस्लाम, ये भी थे मुसलमान, अलैकुम सलाम, दिल से इस्लाम पर कोई अकीदा नहीं है लेकिन ज़बान से इस्लाम का इजहार है। कुछ वो थे मिनन्नास मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, सब आए कुरान है, कुछ वो लोग हैं जो अल्लाह की इबादत करते तो है मगर कंडीशनल इबादत करते हैं, बंदगी का में शर्त नहीं होती, बंदगी का मतलब ही यही है, वे चूनो चरा, क्यों कैसे आपा से नहीं किया जाता, अब्द और आके का आका का रिश्ता जो होता है उसमें क्यों तो कोई उसका हुक्म हो गया तो मानना है, सरदारी की गुंजाइश नहीं होती है, तो कुछ वो हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं अला हर्फ, कंडीशनल इबादत करते हैं, इन इन शर्तों पर इबादत करेंगे, इन इन हालात में करेंगे, इन हालात में इबादत नहीं करेंगे। मैं यअबुदुल्लाह अला हर्फ इन असाबहु खैरन इत्मअन्न बिह, मस्जिद में गए रमजान में, इफ्तार का मौका है, वहां पर इफ्तारी उफ्तारी ठीक ठाक मिली, लोगों ने इज्जत भी किया, एहतराम भी किया, ठीक है मस्जिद में जाएंगे, औदाना मौजा किसी ने मस्जिद में हमारी वैसरानी की, आज से यहां नहीं जाएंगे, इनके यहां फला के मस्जिद में नहीं जाएंगे, हमारी इज्जत नहीं हुई, फला के मस्जिद में गए ठीक से उन्होंने तबर्रुक नहीं दिया, भाई मस्जिद तो उनके ठीक ठाक होती है मगर उनका बर्ताव अच्छा नहीं है, इसका एतराज होते हैं ना। وَمَنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ أَصَابَهُ خَيْرًا اطْمَأَنَّ بِهِ, अगर उसे अल्लाह की इबादत के नतीजे में कुछ मिल गया, फल मिला, वहां तो नहीं, यहां दुनिया की बात हो रही है, आखिरत की बात नहीं अभी हो रही है, अगर दुनिया में कोई भलाई उनको मिल गई, कुछ फायदा हो गया, मौलाना आए थे कहा खौफ निकालो, खौफ निकाला, बड़ा जबरदस्त फायदा हुआ बिजनेस में, अगले साल फिर निकालेंगे, و این اصابت و فتنتون. اور اگر دین کے بعد کسی مصیبت میں پھنس گئے خود نکالا جاؤں گا کاروبار میں گھاٹا ہو گیا تو یہ سب بالکل نہیں نکالیں گے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. عبادت کرتے ہیں خدا کی کنڈیشنل کرتے ہیں, اگر کوئی بھلائی مل گئی تو عبادت جاری رہے گی, لیکن اگر کہیں کوئی نقصان ہو گیا, کسی مصیبت میں پھنس گئے, کسی پریشانی میں پھنس گئے, جاب پہ حرف آ گیا, بزنس میں کوئی گھاٹا ہو گیا, دین کو قبول کرنے کی وجہ سے انقلاب علی وجہ, تو الٹے پاؤں واپس چلے جاتے ہیں. یہ صرف اچھے حالات کے ساتھ ہی, مشکلوں میں یہ خدا کو نہیں مانتے. اور وہیں پر کچھ وہ ہیں, وَمِنَ النَّاسِ, تیسرا کرو, مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ واللہ رؤوف بالعباد. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کی, اپنی زندگی کی پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں. ہم تو عبد خدا ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا سودا کر لیا ہے مرضی خدا سے. خدا یا تو اگر راضی ہے تو ہمیں اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ہمیں سماج کی کوئی فکر نہیں ہے. جاب چھوٹے گی, بچے گی, بزنس بچے گا, قربان ہو جائے گا, یہ ساری چیزیں تو حیات دنیا کی زینت ہیں. دنیا کی زندگی تو ایک تمہید ہے, ایک مقدمہ ہے, ایک سفر ہے. سفر کو اتنی اہمیت کوئی نہیں دیتا ہے کہ ہمیں بڑا جگہ پہ جانا ہے. اگر فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ملے گا تو جائیں گے, ورنہ نہیں. اگر جانا ہے فرسٹ کلاس کا مل گیا تو کیا کہنا, اگر نہ ملا تو معمولی ٹکٹ پہ بھی جانے کو جانا تو ہے نا. ہمیں آپ کہیں گئے ہیں, آپ کو لوٹ کے اپنے گھر آنا ہے. فرسٹ کلاس سے گئے تھے واپسی میں آپ کو فرسٹ کلاس کا ٹکٹ نہیں ملے کیا کریں, ہم گھر نہیں جائیں گے, بیٹھے رہیں گے وہیں پر. نہیں, وہ سفر ہے بھائی, آرام سے کٹے چاہے تکلیف سے, کاٹنا تو ہے ہی. وَمَنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ بھی ہے تو دین کی قیمت چکانا پڑتی ہے جہاں ضرورت پڑ جائے دین کو. ورنہ اگر یہ کہنا ہے کہ سب کچھ معاملہ ٹھیک رہا تو میں ہم اللہ کی جو ہے بندگی کریں گے, بندگی نہیں ہوئی نا. اس کو بندگی نہیں کہتے. بندگی وہ جو عافیہ نے کی. عافیہ فرعون کی بیوی آپ دیکھیں واقعی میں, اور اتفاق قرآن میں رب العالم نے عافیہ کو آئیڈیل قرار دیا ہے مومنوں کے لیے, صرف جو ہے عورتوں کے لیے نہیں. آمنو ضرب اللہ مثلا للذین آمنو. آمنو میں مرد عورت سب آ گئے, جتنے بھی ایمان لائے ہیں سب کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ ہالی ووڈ کی کوئی ایکٹر نہیں ہے. خدا نے آئیڈیل دیا ہے نا, بہت سے لوگوں کا آئیڈیل ہوتا ہے. کون آئیڈیل؟ فلا آئیڈیل نہیں, صاحبان ایمان کے لیے آئیڈیل ہے. کون ہے؟ امراتا فرعون. فرعون کی بیوی کو آئیڈیل بنایا ہے. یہ جو ہے سورہ تحریم کی آیتیں ہیں. اس سے پہلے آیت میں عجیب خدا نے وہ دو چیزیں نا, رابطہ اور رابطہ, کیا اہمیت رابطے کو ہے یا رابطے کو ہے. ہم لوگ عام طور سے بات کے قائل ہیں کہ رابطے کو اہمیت ہے. بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ علی کے چاہنے والے ہیں, اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ محب اہل بیت ہیں, تو جنت آپ کی پکی ہے, آپ کا عمل کیسا بھی ہو. یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا رابطہ. دو آیتیں پہلے نقل ہوئی ہیں اور دونوں میں آئیڈیل کا تذکرہ ہے. ایک میں آئیڈیل مومنوں کے لیے, ایک میں آئیڈیل کافروں کے لیے. اور دونوں جہاں پہ یہ دکھایا گیا ہے کہ رابطہ اصل نہیں ہے, اصل رابطہ ہے. آپ ممکن ہے کہ آپ کا رابطہ بہت اچھے لوگوں سے ہے, لیکن ان اچھے لوگوں کی سیرت کو اگر آپ نے نہیں اپنایا ہے تو آپ بیکار ہیں. اور ممکن ہے کہ آپ کا رابطہ بہت برے لوگوں سے ہے, مگر آپ ان بروں کے راستے پر نہیں چلے, بلکہ بروں سے رابطہ رہنے کے باوجود آپ نے اچھوں کا راستہ اپنایا ہے. कई बातें आयत में है यहाँ के ऊपर। पहली बात तो ये, बहुत सारे लोग वो बहाना माहौल असर तो करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन माहौल से बढ़ करके इंसान का अपना इरादा है। अच्छे माहौल में रहने के बाद भी जरूरी नहीं कि इंसान अच्छा बन जाए, अगर चाहे अच्छा माहौल मुआसिर है, असर अंदाज होता है, मगर हर से आखिर नहीं है। बुरे माहौल में रहने वाले के लिए जरूरी नहीं जो यकीनन बुरा ही बन जाए, अगरचे बुरा माहौल बुरा बनाने में असरअंदाज होता है, मगर हर से आखिर नहीं है। दो आयते पैगाम है, पहले तो अजवाज पैगंबर का तस्करा किया गया है, थोड़ा बहुत पैगंबर की बीवियों को नाटकार हुई है, डॉक्टर साहब ने भी फटकारी वाली आयत पढ़ी थी, उसमें भी है अजवाजे पैगंबर को डाक फटकार हुई है। उसके बाद काफिरों के जो लोग कुफ्र इख्तियार करते हैं उनके लिए मिसाल है, उनके लिए मिसाल इबरत है। कौन? नूह की ज़ौजा और लूत की ज़ौजा, इनका राबता बड़ा मजबूत था, रिश्ता बहुत मजबूत है। नबी की बीवी है, नबी की पार्टी में नहीं है, सिर्फ नबी की बीवी है। कानता तहता अब्दैन मिन इबादना सालिहैन, ये दोनों हमारे दो साले और नेक बंदों की बीवियां थी। तो राबता तो बहुत अच्छा था, रिश्ता तो बड़ा मजबूत रिश्ता था, लेकिन राबता मजबूत था। फखानता हुमा, इन दोनों ने अपने शौहरों के साथ, हमारे साले बंदों के साथ खयानत की, यानी उनकी तालीमात को नहीं अपनाया, उनके रास्ते पर गामजन नहीं हुई। रिश्ता ज़ौजियत तो है, ताल्लुक तो है, राबता तो है, लेकिन जब राबते की बात आई तो उन्होंने राबते को नजरअंदाज कर दिया, जो राबता उनके काम आएगा। फलम युग्निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैया, इस राबते की बिना पर उन्हें कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है, क्योंकि इस्लाम में अहमियत राबते को है, राबते को नहीं है। फलम युग्निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैया, जब क़यामत का मौका आएगा फायदा तो उन्हें मालूम होना है। वकीलत खुला हुमा फिन्नार महदाखिलीन, उनसे कहा जाएगा, उन दोनों से कहा जाएगा, तुम भी जहन्नम में जाने वालों के साथ जहन्नम में चले जाओ। क्यों कहा जाएगा? इसलिए कि राबता तो रखा था उन्होंने, मगर उनकी तालीमात से फायदा नहीं उठाया। अरे नबी की ज़ौजा थी, नबी की भी इतना अच्छा माहौल कहां मिलेगा इसके अलावा? तो माहौल हमेशा जरूरी। अब उसके बरक्स फिर दूसरी मिसाल, बाद लोग कहते हैं क्या करें हम तो खराब माहौल में थे। ठीक है, आप लोग यहाँ रहते होंगे, वहां पर दीन पे अमल करना आसान होगा, हम कहाँ रहते हैं, भला यहाँ के ऊपर कैसे मुमकिन हो सकता है? आप लोग आकर के बातें कर देते हैं, ये करो वो करो वो करो, आपको पता भी है किस माहौल में, अब तक हम जिस माहौल में रहते हैं आपसे ज्यादा बुरा माहौल है। हम कोई होते कुंभ में नहीं रहते, आपका माहौल हमारे माहौल से फिर भी अच्छा है। ये ना कहें कि आपको माहौल का अंदाजा नहीं है, हम आपसे ज्यादा खतरनाक माहौल में रहते हैं, आपसे ज्यादा खराब माहौल में रहते हैं। खराब माहौल में रहना खराबी के लिए बहाना नहीं बन सकता है। बुरे माहौल में अगर कि कोई जी रहा है कि बुरा माहौल जो है बुराई के लिए बहाना उज्र नहीं है। खुदावंद आलम ने उज्र को खत्म कर दिया है बयान करके, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इमरात फिरऔन, जो लोग साहिबान ईमान है अल्लाह ने उनके लिए नमूना अमल फिरौन की बीवी को करार दिया है। देखो फिरौन की बीवी किस माहौल में रह रही थी? दीनी माहौल में रह रही थी, तौहीदी माहौल में रह रही थी। किस माहौल में थी उनकी बीवी? फिरौन की बीवी है जो खुदाई का दावा खुदा के मुकाबले में आ गया है। मैं कुछ लोग होते खुदा को मानते नहीं है, कुछ वो होते हैं जो खुदा को मानते तो है खुदा की बात को नहीं मानते हैं, मगर ये वो नहीं है, ये न खुदा को मानता है न खुदा की बात को, बल्कि खुदा के मुकाबले में आ गया। खुदा के मुकाबले में अपनी खुदाई का ऐलान, अना रब्बुकुम अला, मैं हूं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। आसिया उनकी बीवी है, मलिका है आसिया, दुनिया की सारी सहूलतें सारी नियमतें आम तौर से औरतों को जो कुछ चाहिए, आम तौर से बात कर रहा हूं, हर औरत की बात नहीं है, आम तौर से औरतों को जो कुछ चाहिए वो सब आसिया को जो मिल चुका है। बेहतरीन जेवरात आसिया के पास, कैसे बात है मुल्क में आसिया से बेहतर किसी के पास नहीं। मैंने कहा फिरौन ने कही खुदा की बीवी है, कोई खेल है, कोई खेल थोड़ी है। बेहतरीन जेवरात उनके पास, बेहतरीन महल उनका, बेहतरीन सवारी उनके पास, बेहतरीन खाना उनके पास, बेहतरीन कपड़ा उनकी, जो आप सोच सकते हैं। तमाम ये जो है लजायज दुनिया की आखिरी हर जो आप तसव्वुर कर सकते हैं वो आसिया को फराहम है। और आसिया अभी तक मोमिना नहीं है, फिरौन की बीवी है, इस माहौल में है कि अचानक जनाबे मूसा का दावा ये जो है नबूवत सामने आता है, और होते होते वो माजरा जादूगरों का मौका वाकया सामने आता है। जादूगरों ने सांप फेंके, मूसा ने आसा फेंका, आसा ने सबको जो है वो निगल लिया। वही जादूगर जिनको फिरौन अपने दिशा में लाया था, वो जब जादूगर मूसा पर ईमान लाए तो बहुत से लोगों पर नाबे मूसा की हकानियत आश्कार हो गई। मेन जुमला उसमें जनाबे आसिया पर, मेन जुमला जनाबे आसिया पर यह हकीकत आश्कार हो गई कि मूसा पर हक नबी है, मूसा का दावा नबूवत झूठा दावा नहीं है। अब जब आसिया पर हकीकत आश्कार हो गई है फिरौन के माहौल में, है फिरौन के महल में, है फिरौन की बीवी है, दौजाए फिरौन है, लेकिन जब हकानियत को देख लिया तो राबेते को छोड़ करके जाबेते को अपनाया, रिश्तों को ठोकर मार दी, ईमान को कबूल कर लिया आसिया ने। दो चीजें नहीं छुपती है भाई, मुश्क की खुशबू नहीं छुपती है और मोमिन का ईमान नहीं छुपता है। ला छुपाए इंसान ईमान को, ला छुपाए कहीं ना कहीं जाहिर हो ही जाता है। तो जनाबे आसिया ईमान ला चुकी हैं, अब आसार जाहिर होने लगे हैं। ईमान जब दिल में आएगा तो उसके असर जाहिर होगी, किरदार बदल जाएगा इंसान का। नामुमकिन है कि वो काफिर हम मोमिन अमल दोनों का जैसा, ये नहीं हो सकता। अगर कल्ब में ईमान है तो तब्दीली आगे रहेगी। नामुमकिन है कि कुफर का भी वही अमल, ईमान का भी वही अमल, काफिर भी वैसे ही, मोमिन भी वैसे ही। अगर दोनों एक जैसे हैं तो यकीनन या वो झूठा है ये झूठे हैं, या वो सच्चा काफिर नहीं है, या ये सच्चे मोमिन नहीं है। आसिया के हाथ तब्दीलियां रुनुमा हो रही हैं। फिरौन भी भाग गया, आसिया क्या तुम भी? आसिया छुपा सकती थी अपने ईमान को, अब ये मौका छुपाने का नहीं था, ये मौका छुपाने का नहीं, क्योंकि इस मौके पर अगर आसिया अपने ईमान को इजहार करेगी उन्हें पता है अंजाम क्या होगा। आसिया जानती है कि अपने ईमान की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन इस कीमत को चुकाने के अंजाम में तहरीक मूसा को इस्तेहकाम मिलेगा। जब आवाम में खबरें पहुंचेंगी कि फिरौन की बीवी भी मूसा पर ईमान ले आई। अभी तो यह कहा जा रहा है कुछ अवकाश है जो मूसा के साथ है, कुछ फकीर फकरा जो है भिखारी मूसा के साथ लगे हुए हैं, लेकिन जब तब आवाम में यह पैगाम पहुंचेगा, अरे मालूम हुआ फिरौन की जौजा ने भी मूसा पर ईमान को कबूल कर लिया, खुदाए मूसा को फिरौन की जौजा ने भी मान लिया, मूसा को फिरौन की जौजा ने भी नबी मान लिया, तो फिरौन के मुकाबले में मूसा की तहरीक को अचानक दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की
मिलेगी।
हो सकता है जिंदगी से महरूम कर दी जाए आसिया, हो सकता है महल के नामो नाम से महरूम कर दी जाए आसिया। आसिया हर कीमत को चुकाने के लिए तैयार है अगर दीन खुदा को इससे
काम
है। ईमान लाई हूं मैं मोमिन का, तुम्हें पता है अंजाम क्या होगा, कहां हर अंजाम को भुगतने के लिए तैयार हैं। आसिया सोच समझ के गुफ्तगू करो, नाजो न्याम में सली हो, ये सारी आसाइशें छिन जाएगी। हम तैयार हैं, सब छोड़ने को तैयार है। कैसे नेमतों से महरूम नहीं करेंगे, सदाएं भी तुम्हें दी जाएंगी। आसिया कहती है सदाओं को बर्दाश्त करने को भी तैयार है हम, नारे की हद तक नहीं, अमल के मैदान में दिया। पता है आसिया के साथ क्या हुआ? वो आसिया जब फूलों के शेष पे सोया करती थी, जो फूलों के शेष पे सोती थी, एक इंसान है जो पहले ही बचपन से सख्ती में पला बढ़ा है, उसके लिए अगर दो चार कोड़े पड़ जाए उसके बदन पर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। लेकिन आसिया बचपन से नाजो नियाम में पली है, फूलों के शेष पे सोने वाली आसिया, उन्हें ले जाता है चटियल मैदान में, जमीन पर लटा दिया जाता है। लटाने के बाद चार कीड़े लाई गई, एक इस हाथ में ठोकी गई, एक इस हाथ में ठोकी गई, एक इस पैर में ठोकी गई, उस पैर में, चारों हाथ पैर में चार कीले ठोक। सुई चुभती है अजीजों तो क्या हासिल होता है? जबान से कह देना आसान तस्वुर अगर कोई आदमी करे, आसिया अभी मौका है, आसिया तैयार नहीं। कीले ठोक दी गई, आसिया के सीने पर बड़े सा बड़ा सा पत्थर ला करके रख दिया। उस वक्त आसिया के जबान से जो निकला है क्या निकला है? फिरौन के हाथ से दरखास्त नहीं करते, फिरौन मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे, मैं तेरी रोजा रही हूं, नहीं। अब इस खुदा को मान लिया, उसे खुदा से रब इब्ने ली इंदका बैतन फिल जन्ना। आसिया ये नहीं कहते खुदाया फिरौन के दिल में रहम डाल दे, फिरौन मुझे छोड़ दे, इन तकलीफों की कोई हैसियत नहीं है। फिरौन ने अपने महल से हमें महल नहीं चाहिए, रब इब्ने ली इंदका बैतन, खुदाया मुझे तो तेरा कुर्ब चाहिए। पहले मरहले में आसिया जन्नत भी नहीं मांग रही है, रब इब्ने ली बैतन इंदक, अपने पास एक घर दे दे फिर जन्नत, जन्नत में। यानी आसिया को वो जन्नत भी नहीं चाहिए जहाँ कुर्ब खुदाबंदी ना हो, और जन्नत नहीं चाहिए आसिया को, वो जन्नत तेरे पास है, रब इब्ने ली इंदका बैतन, वो घर जिससे कुर्बत की बू आए, जिससे कुर्बत का इजहार हो सके, रब इब्ने ली बैतन इंदका फिल जन्ना। उसके बाद तीन दुआएं की हैं, वनजनी, मुझे नजात दे दे, किस चीज से? इस तशद्दुद से, इस टॉर्चर से, इस तकलीफ नहीं, नजनी मिन फिरौन रसूल अमले, पालने वाले मुझे फिरौन से नजात दिला दे, फिरौन की बदकारियों से नजात दिला दे, मुझे जुल्म की परवाह नहीं है, मुझे तकलीफ की परवाह नहीं है। आसिया ने शिकायत नहीं की कि पालने वाले मेरी हड्डियां चकना चूर हो रही है, मैं जलती हुई जमीन के ऊपर ये हर भूली जा रही हूं, इसकी शिकायत नहीं कर रही आसिया। रब इब्ने ली इंदका बैतन फिल जन्ना, मुझे अपना कुर्ब दे दे पहली बात, मुझे फिरौन और उसकी बदकारियों से नजात दिला दे, वनजनी मिन अल-क़ौम अज़-ज़ालिमीन, इन ज़ालिमों के आबादी से, ज़ालिमों के महल्ले से, ज़ालिमों के माहौल से हमें नजात दिला दे। जनाब आसिया का किरदार रहा, जनाब अबू ज़र आसिया के दीन की कीमत चुकाना पड़ती है, ये हम अपने ज़हनों में खुरच के निकाल दें। क्या मुसलमान भी रहेंगे, हम शिया भी रहेंगे, हम मुहिब्बे अहले बैत भी रहेंगे, हमें दुनिया में किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं उठाना पड़ेगी। न किसी नबी के साथ ये हुआ, न किसी वली के साथ हुआ, तो हमारी आपकी हैसियत क्या है? किस गिनती शुमार में हम और आप है? अगर दुनिया में तकलीफ झेलना औलिया खुदा के मुकद्दर में न होता, इतनी सारी हाथ, कौन ऐसा नबी है जिसने अजियतें नहीं बर्दाश्त, मुझे बताइए, कौन ऐसा नबी है जिसके लिए हमेशा ये जो है जिंदाबाद जिंदाबाद किनारे लगे हों? होता तो यही था ना कि जब नबी तबलीग करते कोई पत्थर मारता था। हमने कब से तसव्वुर कर लिया है कि हम सारा हमें अजर इसी दुनिया में मिल जाएगा? दुनिया तो दारुल अमल है ना, दारे जजा तो नहीं है, दारे जजा तो आखिरत है, हमें सैलरी वहां मिलेगी, यहां थोड़ी मिलेगी, तो काम की जगह है, कारखाने में तनख्वाह नहीं मिलती है, तो बाद में ऑफिस में जाइएगा तो वहां तनख्वाह मिलेगा, ये काम की जगह है, दारुल अमल है, दारे जजा ये नहीं है। हर नबी को दीन को बचाने के लिए कभी हुसैन के खून की जरूरत पड़ जाती है, कभी अली असगर के खून की जरूरत पड़ जाती है, और खून दिया कि नहीं दिया। जनाब अबू ज़र के साथ भी यही हुआ, वो पिटाई हुई जनाब अबू ज़र की, बुरी तरह लहू लहान हो गए। इतने में जनाब अब्बास पैगंबर के चचा आ गए, उन्होंने आकर के बीच बचाव कराया, उन्होंने नजात दिलाई। लेकर क्या जनाब अबू ज़र के पास वो ज़र्फ़ है, इस ज़र्फ़ियत के हामिल है अबू ज़र, उनसे पैगंबर इस्लाम ये वसीयतें कर रहे हैं। या अबू ज़र और उज़िल्लाह, अबू ज़र इस तरह से अल्लाह की इबादत करो गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम ये कहो कि हम कहां देख रहे हैं, फइन्नका फइन्कुन्ता ला तरा फइन्नहु यराक, अगर तुम उसे नहीं देख पा रहे हो वो तो तुम्हें देख रहा है, वो तो तुम्हें देख रहा है। तसव्वुर कर लीजिए, अरे बात मारिफ को समझने के लिए ये जो है मादी चीजों की जो है मिसाल देना पड़ जाती है। सर सीधे में कैसे कमरे में बैठे, इसके दीवारें शीशे की हैं, ऐसे शीशे हैं ना कि एक साइड वाले देख सकते हैं और दूसरे साइड वाले नहीं देख सकते। अभी शीशे ऐसे होते हैं, यहाँ बाहर वाले को देखने में बाहर वाला हमें नहीं देख सकता, उल्टा कर दीजिए, ऐसा शीशा है कि हम बाहर वालों को नहीं देख पा रहे मगर बाहर वाले हमें देख रहे हैं। हम किसी ऐसे कमरे में बैठे हैं, शीशे की दीवार ऐसा शीशा है कि बाहर वाले हमें देख सकते हैं, हम बाहर वालों को नहीं देख सकते हैं। अब अगर ऐसे कमरे में हम बैठे हैं और हमें पता है कि बाहर कुछ लोग हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम ये नहीं चाहते कि दूसरे देखें, बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनको हमें पसंद नहीं आता है कि कोई हमें देखे। अगर हमें इस बात का एहसास हो जाए कि बाहर से कोई हमें देख रहा है, हम कभी वो काम अंजाम देंगे हर गिर हम। और अगर खुसूसन ये पता चल जाए कि देखने वाला कोई बड़ा अहम इंसान है, बड़ी अजीम शख्सियत है, ऐसी शख्सियत हमें देख रही है जिसकी खफगी नाराजगी हमारी जिंदगी पर असरअंदाज हो सकती है, कभी हम मुकाम अंजाम देंगे? हम उसे नहीं देख रहे हैं। पैगंबर फरमाते हैं अबुदिल्लाह कअन्नका तरा, अबू ज़र अल्लाह की इबादत इस तरह से करो गोया तुम उसे देख रहे हो। फइन कुन्ता ला तरा, अगर तुम उसे अभी नहीं देख पा रहे हो, वो तुम्हारे अंदर दिल की आंखें अभी खुली नहीं है, दिल की आंखें अभी बेदार नहीं हुई है, क्योंकि अल्लाह को इन आंखों में नहीं देखा जा सकता है, अल्लाह को दिल की आंखों में देखा जा सकता है। अभी अगर हमारी दिल की आंखें खुली नहीं है, कम से कम इतना तो है ना कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है, इस तरह से तुम उसकी इबादत करो। अभी किस तरह से ये चीजें हासिल हो सकती है, इंशाल्लाह कल अर्ज करूंगा। जो फरमाते हैं सुम्मल, फिर फरमाते हैं अलम या अबादर ان اول العباده المعرفه به, जब इस तरह की इबादत कैसे की जा सकती है, इसकी इब्तिदा कहां से हो, इसका आगाज कहां से हो, इसका आगाज यह है कि पहले तुम अल्लाह की मारिफत हासिल करो। कौन सी मारिफत है? मारिफत तीन चार उसमें हज़्ज़ करूंगा कल, अल्लाह की तो मारिफत हासिल करो, ثم الاقرار به, अल्लाह की मारिफत हासिल करने के बाद हमारी नबूवत का एतराफ करो, ثم حب اهل بيتي, पहले अव्वल इबादत क्या है, इबादत का आगाज कहां, उस तरह की इबादत का आगाज कहां से, ये वाली इबादत नहीं हम अंजाम देते हैं, वो वाली इबादत जिसमें इस तरह से इबादत अंजाम पाए कि गोया खुदा को हम देख रहे हैं। उसके लिए पहला मरहला यह है कि अल्लाह की मारिफत हासिल करो, दूसरा मरहला है मेरी नबूवत का इकरार, हम हुब अहले बैती, उसके बाद हमारे अहले बैत की मोहब्बत, हमारे अहले बैत की मोहब्बत हमारे खानदान की मोहब्बत नहीं है, अहले बैत वो अफराद है कि अगर इनकी मोहब्बत दिल में समा गई तो इंसान को जो है मुसल्ला छोड़ने को जी नहीं कहेगा। मोहब्बत अहले बैत तुम्हें अल्लाह की इबादत की तरफ ले जाएगी, मोहब्बत अहले बैत तुम्हें और फिर इबादत खुदा में टकराव नहीं होगा। तो सवाल ही किया जाए कि नमाज अफजल है कि मोहब्बत अहले बैत अफजल है, वहां बहस होती है, दो अलग अलग चीजें हो ना, जहां दो अलग अलग चीजों वहां आप पूछेंगे, आप कहता था डॉक्टर साहब अफजल है कि मैं अफजल हूं, डॉक्टर साहब और हैं मैं और, दो अलग अलग शख्सियत है, डॉक्टर अकबर साहब अफजल है, ये डॉक्टर साहब अफजल है, तो बहस न जाए, लेकिन जहाँ एक ही हो, एक ही मौजूद हो, आप कहेंगे डॉक्टर अकबर साहब बेहतर है या डॉक्टर अकबर जैदी साहब बेहतर है, दोनों तो एक ही है, क्या बात कर रहे हैं, एक ही में तो मुकाबला नहीं ना किया जाता। अरीजो हमारे बेहतर या मोहब्बत अहले बैत, ये दोनों एक चीज है, मोहब्बत अहले बैत का नतीजा है अमल, मोहब्बत अहले बैत का नतीजा है अमल, अगर मोहब्बत अहले बैत है नहीं तो अमल होगा ही नहीं, उठा हौसला होगा, उठक बैठक होगी, वो नमाज नहीं हो सकती है, वो नमाज तो पैगंबर मुजर से कह रहे हैं, वो नमाज अगर पढ़ना है तो मोहब्बत अहले बैत जरूरी है, नतीजा है मोहब्बत अहले बैत का, क्यों कुछ देख रहा है, अहले बैत ही है वो जो खुदा की तरफ ले जाते हैं, तो खुदा की तरफ रास्ता दिखाते हैं, और अब इस रास्ता दिखाने के लिए हालात का वो इंतजार नहीं करते, हालात कैसे ही हो, चुनांचे अहले बैत की एक फर्द क्या शहादत का दिन था, यानी आसमान इमामत के चौथे सितारे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, कल मैंने थोड़ा इशारा किया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो हिदायत की जिम्मेदारियां संभाली, किस हालत, बिल्कुल इस्तेसनाई जमाना है इमाम का, देखें कि वाकई अगर पैगंबर ने इनकी मोहब्बत के लिए कहा है, वाकई में मोहब्बत करने के काबिल हैं या नहीं है, किस वक्त इस फरीसे को इमाम ने संभाला है, पूरा घर कुर्बान हो चुका है, हमें से बहुत सारे लोग होते हैं कोई नेक काम करते आते थक जाते हैं, दिन भर अश्ताक हो जाते हैं, कितना किया और अंजाम ये हुआ, छोड़ो आज के बाद से काम नहीं करेंगे, बंद कर देते हैं सेंटर, बंद कर देते हैं इदारा, नहीं करते काम, क्योंकि हमें तवक्को ही होती है ना कि अगर हम कोई काम करें तो कम से कम थोड़ी बहुत तारीफ तो करी दे हमारी, तारीफ अगर न करें तो हम इतराज न करें, आमतौर से होता है जज्बा, आप देखें कि इनके साथ जो कुछ ऐसा बर्ताव हुआ क्यों हुआ था, या पूरा घर शहीद कर देगा किस जुर्म में, किसी कुछ ये जो है बिगाड़ा था इन्होंने किस जुर्म में, एक ही जुर्म तो था कि लोगों को खुदा का रास्ता दिखाना चाहते थे, चाहते थे कि राह माबूद मसदूद ना होने पाए, वो तालीमात जो अल्लाह ने पैगंबर के जरिए भेजी है वो मिटने ना पाए, वो तालीमात किसके फायदे में थी, अल्लाह के फायदे में, रसूलुल्लाह के फायदे में, इमामों के फायदे में, या अवाम के फायदे में थी, इन्हीं के लिए कर रहे, इन्होंने क्या सुलूक किया, इन्होंने वो सुलूक किया जो सुलूक जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता, इन्होंने पानी तक नहीं दिया, हमारे छोटे बड़े किसी पर रहम नहीं किया, ऐसे हालात में इमाम सज्जाद ने इमामत की जिम्मेदारी कमा ली, ऐसे हालात, एक ऐसा घुटन का माहौल है जहां तकरीर भी नहीं की जा सकती है, जहां बोलने के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, चाहे वो ये जो है यजीद का दौर हो या यजीद के बाद जो है मरवान का दौर हो, अब्दुल मलिक इब्ने मरवान का दौर हो, ये सारे वो हालात हैं, हज्जाज जैसा तफाक गवर्नर बना हुआ है जिसने 120,000 शियों का कत्ल किया, शुभा भी अगर हो जाता था किसी के ऊपर भी अली का चाहने वाला है तो उसे खत्म कर दिया जाता था, ऐसे हालात हैं, ऐसे मौके हैं, किस तरह से इमाम हिदायत की जिम्मेदारियों को अंजाम दे, तकरीर करना करने में पाबंदी है, चार आदमी अगर इकट्ठा हो जाए इमाम के बयान को सुनने के लिए, फौरन हुकूमत की तरफ से उनको कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, उनका खात्मा कर दिया जाएगा, मगर इमाम को हिदायत के रास्ते को कायम रखना है, चंद रास्ते इमाम ने, चंद तरकीबें, चंद हिकमत अमली इमाम ने अपनाई है दीन खुदा को बाकी रखने के, कामयाबी के साथ दीन खुदा को इमाम ने आगे बढ़ाया और हिदायत के काम को अंजाम दिया, दो तीन काम था इमाम ने किया, एक तो खुफिया कॉलेज कायम कर दिया, खुफिया कॉलेज कैसे, इमाम अलैहिस्सलाम अगर ये कहते थे हमने फला स्कूल खोला है, फला मदरसा खोला है, उसमें लोग आए, तब तो किसी को आने की हिम्मत ही नहीं होगी, वहां जा कैसे सकते हैं, वहां तो पहले लगे हुए हैं, ایوان بازار جاتے تھے, وہاں سے انجیل کے غلام خرید کے لاتے تھے. وہاں سال میں دو مرتبہ کام کرتے تھے, چھ چھ مہینے کا کورس ہوتا تھا. اس کالج میں چھ چھ مہینے کا کورس ہے, چھ مہینے میں یہ جو ہے گریجویٹ ہو جاتے تھے. بازار سے گئے غلام خرید کے لائے, وہ غلام خریدنا عام سی چیز ہے. غلاموں کو لائے, لانے کے بعد ان کو زبانی درس بھی دیا جا رہا ہے, عملی سبق بھی دیا جا رہا ہے. وہ قریب سے آ کر کے ایمان کے دہن سے اسلام کو سن بھی رہے ہیں, ایمان کی زندگی میں دین کو دیکھ بھی رہے ہیں. ایک دن انہوں نے وہاں دیکھا تھا, بنی امیہ کے ہاں دیکھا تھا. ایک دن جو ہے مدینے کے کچو بازار میں دیکھتے تھے, اور ایک دن امام سجاد کے گھر میں دیکھتے تھے. بڑا فرق تھا دونوں میں. موقع نہیں تو میں مدینے کے دین کو بیان کروں کہ حالات کہاں تک پہنچ چکے تھے, کتنے ناگفتہ بے حالات ہو چکے تھے. دین کا فقط نام باقی رہ گیا تھا, ورنہ دین کی تعلیمات تو مٹ چکی تھی. کون ایسی برائی تھی جو مدینے میں نہیں ہوتی تھی؟ کون ایسا گناہ تھا جو وہاں پر نہیں ہوا کرتا تھا؟ وہ ساری چیزیں اسلام نے حرام قرار دی تھی, وہاں کے اوپر علم انجام تھا. تحصیل ہونا ہے, جس دن کالج سے سند ملنی ہے اس دن تو ایسا سبق ان کو دیتے تھے زندگی بھر نہ بھولیں گے. امام سجاد اس زمانے میں آزاد کرتے تھے کہ کشک غلام ہے گھر میں, کنیزیں ہیں گھر میں. ظاہر سی بات ہے جو ہے خطائیں بھی ہوتی ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں. امام کسی کو سزا نہیں دیتے تھے. جس غلام سے کوئی خطا ہوئی رجسٹر بنا رکھا تھا, لکھ لیا نام فلاں ابن فلاں نے فلاں دن یہ خطا کی, سزا نہیں دی گئی. فلاں نے یہ خطا کی, سب کا لکھا ہوا ہے. کل عید ہے, شب عید جب آتی تھی, یہ جو بقر عید کی شب اور عید الفطر کی شب, دو مرتبہ کام انجام پاتا تھا. آئے غلام, سارے غلاموں کو امام نے اکٹھا کر لیا. یعنی گویا کالج کے سارے جو ہے اسٹوڈینٹ اکٹھا ہو گئے. رجسٹر کھلا ہوا ہے, تمہیں یاد ہے تم نے فلاں دن تم سے یہ خطا ہوئی تھی؟ ہاں مولا ہوئی تو تھی. تم کو سزا ملی؟ نہیں. فلاں دن؟ نہیں. فلاں دن ابھی بیچارہ پریشان ہے, کاش اسی دن سزا دے لی. اکٹھا سزا کون بھگتے گا؟ وہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ اکٹھا سزا ملے گی, پریشان ہو رہا ہے. کوئی سزا تمہیں ملی؟ نہیں. تب سن, میں تمہارے بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہوں, تم میرے ارد گرد کھڑے ہو جاؤ. جو میں کہتا ہوں وہ تم دہراؤ, جو میں کہتا ہوں وہ تم دہراؤ. ٹھیک ہے, دہراتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ بتاؤ اے علی ابن الحسین. تب غلام کہتے ہیں اے علی ابن الحسین, جس طرح سے تم نے ہماری خطائیں لکھ رکھی ہیں اسی طرح سے اللہ نے تمہاری خطائیں لکھ. امام معصوم ہیں, جو کالج ہے نا, تعلیم دے رہے ہیں. امام تو آخری سبق ہے, یہ آخری سبق ہے. جس طرح سے تم نے ہماری خطائیں لکھ رکھی ہیں اسی طرح سے خدا نے تمہاری خطائیں لکھ رکھی ہیں, ان کو سبق دے رہے ہیں. زندگی میں اگر ایسے ہی نہیں, تم جو کام چاہو کرو. میں یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, ذرہ برابر بھی اگر تم کوئی گناہ کرو گے, یاد رکھو وہ دیکھ رہا ہے. تم نہیں دیکھ رہے اس کو, وہ تو دیکھ رہا ہے نا. فإنه یراک, وہ دیکھ رہا ہے. اس کے فرشتے نام اعمال میں سب لکھتے جا رہے ہیں. چنانچہ جب قیامت کے دن نام اعمال پیش ہوگا تو قرآن میں ہے نا, مارے حاضر کتاب میں کیا ہے, لا یغادر فیہا صغیرہ ولا کبیرہ, چھوٹے بڑے سب گناہ. ارے فلاں چیز بھی لکھی ہے, اس کو لوگ گناہ سمجھتے بھی نہیں تھے. اے علی ابن حسین, جس طرح تم نے ہماری غلطیوں کو, ہماری خطاؤں کو, ہمارے گناہوں کو ہمارے نام اعمال میں لکھ رکھا ہے, اللہ نے تمہارے بھی خطاؤں کو لکھ رکھا ہے. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے خطاؤں کو معاف کر دے؟ درگزر کرنے کا سبق اب سکھا رہے ہیں. پہلے تو دیکھو ہوشیار رہو, تم سے غلطیاں نہیں ہونا چاہیے, خطائیں نہیں ہونا چاہیے. گناہ مت کرنا, کیونکہ تمہارے ہر گناہ کو, تمہاری ہر برائی کو لکھنے والے لکھ رہے ہیں. चाहे तो छुप करके अंजाम दो, चाहे अलग-अलग अंजाम, जहां कोई देखने वाला ना हो वहां भी उसका कैमरा चल रहा है, तुम्हारे सारे नामे अमाल जब्त किए जा रहे हैं। ए अब्दुल अली इब्न हुसैन, क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ कर दे? जिस तरह से तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ कर दे, तुम हमारी खताओं को माफ कर दे। कुरान में है ना, वाफू वस्फहू, लोगों की खताओं को माफ कर दो, नजरअंदाज करो लफ्जिशों को, बदला लेने की मत सोचो, सजा लेने की मत सोचो। अला तुहिब्बूना अन यग़फिरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ कर दे? अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ कर दे, तुम बंदों की खताओं को माफ कर दो, अपने भाइयों की खताओं को माफ कर दो। ए अली इब्न हुसैन, जिस तरह से तुमने हमारी खताओं को लिख रखा है, अल्लाह ने तुम्हारी खताओं को लिख रखा है, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ कर दे? अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ कर दे, तुम हमारी खताओं को माफ कर दो। खुदा का वादा है ना कुरान में, अगर तुम अपने भाइयों की गलतियों को माफ कर दोगे, हम तुम्हारी खताओं को माफ करेंगे। जब वो कह चुके थे, एक दफा इमाम सज्जाद अपने हाथों को उठा के कहते थे, पालने वाले हमने इन्हें आजाद किया, पालने वाले हमने इनकी खताओं को माफ किया, तू भी हमारी खताओं को माफ कर दे। पालने वाले हमने, हम इंसान होकर के, बंदे होकर के हमने इनकी खताओं को माफ कर, तू खुदा है बारे लाहा, तू भी अपने वादे को पूरा कर। खताओं को माफ किया, उसके बाद सबको आजाद, क्योंकि गुलाम को जो है गुलामी कराने के नहीं लाए थे। तो खुफिया कॉलेज है जहां इनको तालीम देने के लिए आए थे, क्योंकि अब यहाँ पर जो है मदरसा कायम करने का मौका नहीं है। ये वाकई सबक है उन लोगों के, जो कहते हालात नहीं है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, हर हाल में हो सकता है। तो एक तरीका इमाम ने ये, दूसरा तरीका ईमान का था दुआओं का। जब वक्त नहीं रह गया कि मैं दुआओं के मसले को बयान कर, चार जुमले सिर्फ कहूंगा, अब अर्ज किया कि तो तकरीर का मौका नहीं है। अब यहां कॉलेज में कितने लोग लाए जाएंगे? 150 लाए जाएंगे, 10-20 हजार तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन आवाम तो बहुत ही, इनका क्या होगा, इन्हें कैसे बताया जाए? तकरीर तो नहीं कर सकते, मदीने के मस्जिद में आकर खुतबा दे। ईमान ने तरीका निकाला। एक वाकया सुनाता चलूं, यहां पर ईरान के मशहूर आलिम है आगाए कराती, बहुत मशहूर आलिम है और उस्ताद कुरान है। उनका फन यह है कि आज जब से ईरान में इस्लामी इंकलाब आया, 32 साल से तकरीबन वो टेलीविजन पर दरस कुरान हर हफ्ता देते हैं। सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सीरियल यही है। वो खास उनका अंदाज है, बड़ी ही फनकाराना अंदाज में वो दस देते हैं, क्योंकि बोर नहीं होता, बच्चे बड़े बूढ़े सभी उसको देखना ये जो है पसंद करते हैं। खुदा ने उनको नेमत दी है, एक सलाहियत है उनके पास बोलने की, बड़े अच्छे अंदाज में बोलते हैं। कल इत्तेफाकन ईरान में उनकी, उनको उनके एजाज में एक किया गया था जलसा, उनकी खदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए। हमारे तो ये जलसे जो है मरने के बाद होते हैं, अगर हो गए। ईरान ने एक नई रस्म निकाला है कि यह जिंदगी में लोगों को खराज अकीदत पेश किया जाए। कल था इत्तेफाकन उनका। बहरहाल अफ्रीका गए हुए थे वो, एक कॉन्फ्रेंस थी, हज कॉन्फ्रेंस, और पाबंदी लगाई गई थी कि आप सिर्फ हज के अहकाम और मसाइल के बारे में बात की, दुनिया के किसी बात में नहीं। आलमी सियासत और ये और वो, इसराइल और फलाह और ठिकाना, जुल्म सितम अदल इंसाफ, ये कुछ नहीं। एहराम में क्या चीज हराम है और वाजिबात क्या है और तवाफ कैसे किया जाएगा और सही क्या की जाएगी, हज से मुताल्लिक बातें हो और कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर फलसफा हज भी बयान करने न बैठिएगा। अभी कहना आए हैं यहाँ के ऊपर तो सिर्फ ये तो बयान करने नहीं आए ना, लंबा सफर करके आए, कहना तो है मगर कहे तो कैसे कहें? उनकी पाबंदियों को भी तोड़ नहीं सकते हैं, पाबंदी है उल्टा असर हो जाएगा। ढूंढा मैंने पैगंबर के रोजे की तस्वीर, अभी मिल गई उस तस्वीर को, मैंने अपने साथ रखा। जब मेरी बारी आई, मैं स्टेज पर आया तो मैंने उस तस्वीर को लगा दिया दीवार के ऊपर, और आवाम की तरफ रुख करने के बजाय मैंने अपना रुख कर लिया पैगंबर के रोजे की तरफ, उस तस्वीर की तरफ। और मैंने कहा मैं पैगंबर की जो है जियारत करना चाहता हूं, कुछ सलाम कर लूं पैगंबर को। वही से सीखा चौथे इमाम से। मैं सलाम करना चाहता हूँ पैगंबर खुद चलेगा अस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप पे सलाम, आपने सिखाया था कि जुल्म के आगे कभी सर न झुकाना, मगर या रसूलुल्लाह हम कितने बदबख्त है कि हम जुल्म की हर चौखट के ऊपर सर झुकाने को तैयार हो जाते हैं। ए अल्लाह के रसूल आपकी मस्जिद ऐसी थी, सादा मस्जिद थी मगर उससे जमाना हिलता था, आज हमारे यहाँ इतनी अजीम शान मस्जिद बन गई है मगर इसे कोई खातिर में नहीं लाता है। ए अल्लाह के रसूल आपने ये सिखाया था हम ये कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल आपने ये सिखाया था हम ये कर रहे हैं, तस्लीम नहीं कर रहे हैं, मजमे से खिताब नहीं, खिताब तो रसूलुल्लाह से कर रहे, बराहे मुल्क एक ज़ियारत नामा पूरा उन्होंने तैयार कर लिया था, पूरी बात कह रहे हैं, मजमा हो रहा है, वो मजमा जो मामूली हज के अहकाम के सिवा कुछ सुनने को तैयार नहीं था, इस हिकमत अमली से उन्हें सब कुछ सुना दिया, उनकी आंखों से आंसू भी निकाल दिया, दिल पर असर भी हो गया। उन्होंने कहा मैंने ये तरीका इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सीखा था, इमाम सज्जाद के ऊपर पाबंदी थी कि तकरीर नहीं कर सकते हैं, खुतबे नहीं दे सकते हैं, इमाम सज्जाद मस्जिद में आते थे, आने के बाद सबला लोग बैठ करके हाथ उठा के अल्लाह हुक्मा कहते थे, ए खुदाया तू हमें ऐसा बना दे, खुदाया तू मुझ पर अजाब न नाजिल करना कि मैंने किसी जालिम की हिमायत की है, खुदाया तू मुझ पर अजाब नाजिल न करना कि मैंने जालिम के खिलाफ इनकलाब नहीं किया, उसके खिलाफ कदम नहीं उठाया। यानी कहना ये चाहते मुसलमानों जब कभी कोई जालिम पर सर इकदार हो तो सबकी जिम्मेदारी है उसके खिलाफ आवाज
से
उठा, उस पर अजाब न करना कि हमने शराबी को हाकिम बना दिया है, अगर कहते कि हाकिम शराबी है ये तकलीर हो सकती थी, बात वही सारी कह रहे हैं, एक अंदाज फकत इमाम ने तब्दील कर दिया, एक तो दुआओं का सहारा लिया, एक गुलामों को इकट्ठा करके खुफिया कॉलेज, तीसरी चीज जो है वो याद है करबला, करबला की याद नहीं मिटने देते थे, करबला बकाया इस्लाम का दरिया था ना, इन हालात में आहिस्ता आहिस्ता साल दो साल दस साल बीस साल के बाद क्या हो रहा है करबला को भूल जाते हैं, मुख्तलिफ जो कहते हैं इमाम हमेशा रोते रहे, ये आतिफी रोना नहीं है, एक बाप एक बेटा अपने बाप को याद करके रो रहा है, नहीं बाप अगर बेटा बाप को याद करता साल दो साल के बाद वहां मुंतमिल हो जाता है, ये इमाम का रोना एक तहरीकी रोना है, तहरीकी बोका एक मिशन के साथ रो रहे हैं, एक मकसद के साथ इमाम आंसू बहा रहे हैं, कोई बहाना नहीं मिलता था, बच्चे को अगर देखते थे रोना शुरू कर देते थे, हाय हमारी सकीना इतनी बड़ी तो थी, उसके साथ ये सिस्टम हुआ, पानी सामने आता था तो रोना शुरू कर देते थे कि हाय मेरा बाबा प्यासा मारा गया, गलियों में जा रहे हैं कसाई की जो है दुकान के पास अगर गुजर रहे हैं वहां खड़े हो गए, भाई क्या तुमने इसे पानी पिला दिया है, हाँ मौला हमारा तो तरीका यही है, हम जानवरों को दिफा करने से पहले पानी पिला देते हैं, करबला का तो कहता सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, अरे यहाँ तो जानवरों को भी दिफा करने से पहले पानी पिला दिया जाता है, लेकिन हाय रसूल का नवासा, हाय रसूल का नवासा, तीन दिन तक भूखा पे आजाद दिफा कर दिया गया, एक खतरा पानी न दिया गया, कोई मौका भी इमाम से इमाम हाथ से जाने नहीं देते थे कि करबला भूल में ना पाए। चुनांचे उसी जमाने का एक आलिम है, ये जो है ज़ोहरी जो बनी उमैया की, ये जो है दरबार का आलिम है, मगर बहरहाल इमाम से भी अकीदत रखता है, इमाम की अजमतों से भी आशना है, जाता है इमाम के पास, मौला मेरे बेटे की शादी है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे की शादी में शरीक हो, इमाम फरमाते ज़ोहरी तुम जानते हो जब से मेरे मामा शहीद किए गए मैंने खुशी के महफिलों में जाना छोड़ दिया, ज़ोहरी का इसरार है, इमाम कहता अच्छा एक शर्त पे आऊंगा, वो शर्त क्या है, देखिए कहीं मजलिस नहीं हो सकती थी मगर ये तो चूंकि दरबार का आदमी है ना, ज़ोहरी एक शर्त है, अगर तुम मेरे बाबा की मजलिस रखोगे तो मैं आऊंगा, अगर मेरे बाबा की मजलिस रखोगे तो मैं आऊंगा, ज़ोहरी वादा कर लेता है, मौला आपके बाबा की मजलिस रखने को मैं तैयार हूँ मगर आपकी शिरकत जरूरी है, मजलिस मुनाकिद की जाती है, इमाम तशरीफ लाते हैं, ज़ाकिर मिंबर पे गया है, मसाइले करबला बयान कर रहा है, इमाम की आंखों से आंसू जारी है, हाज़रीन की आंखों से आंसू जारी है, सर झुकाए रो रहे हैं, जब ज़ाकिर ने मजलिस खत्म की है, ज़ाकिर मिंबर से नीचे आया, एक दफा क्या देखा गया कि इमाम मौजूद नहीं है, अब इमाम को ढूंढने लगे तो क्या देखा, इमाम वहां बैठे हैं जहां لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارے لا واسطہ ہے محمد علی محمد کا, ہماری تو مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم دین کو ہر قیمت پر اور ہر حال میں سنبھالے رکھے, اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں بھی دینے کو تیار ہیں. معبود تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کا, ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت دن بدن بڑھتی رہے. بار الہا ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اہل بیت کے نقش قدم پر چل سکے. معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما. بار الہا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. پالنے والے صدقے محل بیت اطہار کے جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرم فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. جب امام کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره. درخواست سے ایک سورہ فاتحہ کے جناب وقار حسین زیدی ابن فضیلت حسین زیدی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.